मैं कोशिश करता हूँ कि बैट्समैनों को ज्यादा रन ना दूं।
वो जितनी विकेटें लेता जा रहा है वो उतना वो और अच्छे से अच्छा होता जा रहा है।
बाद में मिडिल ओवर्स में आते हैं तो फिर यहाँ पे रिवर्स बॉलिंग करते हैं।
द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द एशिया कप बांग्लादेश 2017 इंडिया।
पाकिस्तान और बैटिंग इतनी सीरियस नहीं है जितना होना चाहिए उनको।
पाकिस्तानी टीम T20 में भी लंका ढाने के लिए तैयार। हसन अली में ऐसी क्या खूबी जो दूसरों में नहीं? और पाकिस्तानी हॉकी कैसी बुलंदी कैसी पस्ती। खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का सलाम। वनडे सीरीज में लंका ढाने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 सीरीज में भी श्रीलंका को कोई मौका देने के मूड में नहीं, जिसकी एक झलक उसने गुज़िश्ता रात अबू जहबी के पहले मैच में दिखा दी। आज दूसरा T20 है और पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद की कोशिश यही है कि सीरीज का फैसला अबू जहबी में ही हो जाए। वनडे सीरीज में पाकिस्तानी टीम के क्लीन स्वीप में जहां बाबर आजम, शुएब मलिक और इमामुल हक की शानदार बैटिंग ने अहम किरदार अदा किया, वहीं हसन अली की शानदार बॉलिंग भी नुमाया रही, जिन्होंने 5 मैचों में 14 विकेटें हासिल की और मैन ऑफ द सीरीज रहे। हसन अली को इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए अभी साल ही हुआ है, लेकिन इस मुख्तसर से अरसे में उन्होंने अपनी धाक बिठा दी है। मैंने हसन अली से पूछा कि आपकी बॉलिंग की सबसे खास बात क्या है जिससे आप एक के बाद एक कामयाबी और एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं।
मैं कोशिश करता हूं कि बैट्समैनों को ज्यादा रन ना दूं, उनको स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करूं, और क्योंकि अगर आप रन रोक दोगे तो आपको विकेट मिलना इजी है। मुझ में नेचुरल एग्रेशन है, तो एज ए यंगस्टर ये मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं टीम को उठा के रखूं, टीम को साथ लेके चलूं।
हसन अली की बॉलिंग के बारे में मैंने कप्तान सरफराज अहमद से भी बात की और पूछा कि बहसियत कप्तान आपको हसन अली की बॉलिंग में सबसे बड़ी खूबी क्या दिखाई दी है।
जो सबसे अच्छी चीज है वो एक तो अटैकिंग बॉलिंग करता है और कोशिश करता है कि मैं विकेट लूं, और जो उसकी गलतियां होती हैं उससे वो सीखने की एक तो भरपूर कोशिश करता है। मैं जो समझता हूं उसकी अच्छी चीज ये है, जब भी वो बॉलिंग करने आता है तो मेरा टारगेट ये होता है, उसको यही होता है कि तुमने विकेट वाली बॉलिंग करनी है। विकेट जब अटैकिंग बॉलिंग वो करता है तो पाकिस्तान टीम को विकेट लेके जाता है। आई थिंक यही उसकी सक्सेस का राज है कि वो जितनी विकेट लेता जा रहा है वो उतना वो और अच्छे से अच्छा होता जा रहा है।
ये तो हुई कप्तान की राय, लेकिन हसन अली की बॉलिंग और उनकी कारकर्दगी को एक माहिर किस नजर से देखता है, इसके लिए मैंने बात की साबिक कप्तान रमीज राजा से।
हसन अली की खास बात यह है कि ये गेंद तेज करते हैं, सीधे करते हैं और वैरायटी भी है, और इनके जो इनको जो रोल दिया गया है उस हिसाब से ये अपनी बॉलिंग को उसकी लेंथ बदलते रहते हैं। यानी कि अभी नया गेंद हालांकि करते नहीं है, 7वें-8वें ओवर के बाद आते हैं तो वहाँ पे वो अटैक करते हैं। जब बाद में मिडिल ओवर्स में आते हैं तो फिर यहाँ पे रिवर्स बॉलिंग करते हैं। लास्ट में आके फिर आप स्लो डिलीवरीज भी आप इनकी देखते हैं। तो एक इनको पता, इनका एक ढांचा बना हुआ है कि जिस तरह से इनको पता है कि इस सिचुएशन में ऐसे बैट्समैन को मैंने किस तरह से चित करना है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि विकेटे लेते हैं। यानी कि रन रोकते हैं वो भी करते हैं, विकेटे भी लेते हैं।
भारत ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। भारत 10 साल बाद ये टाइटल दोबारा जीतने में कामयाब हो सका है। भारतीय हॉकी आज किस मकाम पर खड़ी है? दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम फॉरवर्ड द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द एशिया कप बांग्लादेश 2017 इंडिया।
फाइनल किसी भी टीम के लिए जीतना देश को और हर नागरिक को एक खुशी देने वाला मौका हम सबको मिला है, लेकिन हमारी टीम ने जो पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक लय ताल, एक डिसिप्लिन टीम का एक नमूना पेश किया, वो सबसे बढ़कर मुझे खुशी दे रहा है।
साल 1975 में पाकिस्तान के खिलाफ मलेशिया में खेले गए आलमी कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में अपने गोल से भारत को चैंपियन बनाने वाले साबिक ओलंपियन अशोक कुमार का ऐसा कहना उस भारतीय हॉकी टीम की कामयाबी के बाद का है जिसने ढाका में खेले गए एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट को अपने नाम किया। फाइनल में भारत ने मलेशिया को 2-1 से शिकस्त दी। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम एक भी मैच नहीं हारी। हालांकि सुपर फोर में वो साउथ कोरिया से जरूर 1-1 से बराबरी पर रही। कभी एशिया हॉकी की सबसे ताकतवर और 3 बार एशिया कप चैंपियन रही पाकिस्तान को उसने 2 मरतबा मात दी। पहले तो पूल मैच में 3-1 से और उसके बाद सुपर फोर में 4-0 से। भारत की खिताबी जीत में हरमनप्रीत, ललित उपाध्याय, आकाशदीप, सरदार सिंह और गुरजंत जमकर चमके, लेकिन मनप्रीत सिंह की कप्तानी के कायल हो गए हैं हॉकी इंडिया के सेलेक्टर और साबिक ओलंपियन हरबिंदर सिंह।
हर एक टूर्नामेंट कप्तान बदलते रहे हैं, अच्छा ये देखने के लिए कौन ऐसा खिलाड़ी है जो कि टीम को एकजुट करके खेले और अपना पूरा कंट्रोल रखे उसके ऊपर। अभी तक देखने में आया कि इसकी कप्तानी में टीम काफी अच्छा खेल रही है।
एशिया कप में जापान, बांग्लादेश और मलेशिया को हरा कर भारत ने दिखा दिया कि उसकी तैयारी शानदार थी। तो क्या ये भी माना जाए कि नए कोच शॉर्ट मारिन भी अपने पहले इम्तिहान में पास हो गए हैं? अशोक कुमार कहते हैं,
तो कोच को जाना ही है और जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर कि अब यूरोप के साथ यही टीम कैसा खेलेगी भविष्य के अभी गर्भ में है और वो मौके जब आएंगे उम्मीद यही करते हैं ये टीम इस तरह से ही खेले।
साल 2003 और साल 2007 में एशिया कप जीतने के 10 साल बाद भारत ने अब जाकर तीसरी बार एशिया कप जरूर जीता है, लेकिन उसकी असली ताकत का पता दिसंबर में होने वाले हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल में चलेगा। फिलहाल तो हम यही कहेंगे,
कांग्रेचुलेशंस टू द चैंपियंस।
जैसा कि आपने आदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट में पाकिस्तानी हॉकी टीम की कारकर्दगी का जिक्र भी सुना, तो समीउल्लाह से बेहतर इस कारकर्दगी का तजिया और कौन कर सकता है जो इस वक्त मेरे साथ बीबीसी के कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। समीउल्लाह साहब, लंदन के वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तानी टीम 7वें नंबर पर आने के बावजूद दूसरी टीमों के नतायज की बुनियाद पर वर्ल्ड कप में जगह बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन एशिया कप में वो सिर्फ बांग्लादेश और जनूबी कोरिया को ही हरा पाई। इस तरह के नतायज के बाद वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तानी टीम से किस तरह की कारकर्दगी की तवक्को रख सकते हैं?
अभी एक साल है कि हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इतनी सीरियस नहीं है जितना होना चाहिए उनको। जैसे आपने बताया कि दो बड़े टूर्नामेंट थे, खास तौर पे जो क्वालिफायर था वो बड़ा आसान था, उसमें अगर हम क्वालिफायर कर जाते तो काफ़ी बेहतर होता, लेकिन उस वक्त हमने प्लान नहीं किया। हनीफ खान और ख्वाजा जुरैद ने एक जो बड़ी गलती की, वो पुराने खिलाड़ियों को ड्रॉप करके चले गए जो उस वक्त नहीं करना चाहिए था, और फिर उन्होंने एक नई गलती की, वही पुराने खिलाड़ी बुला के फिर उनको खिलाना शुरू कर दिया इस जो एशिया कप में। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान हॉकी टीम की इन दोनों टूर्नामेंट में अच्छी नहीं रही, लेकिन एक अच्छी बात हो गई कि इनको कम से कम जो मेरी बात हुई सबक मिल गया कि अब वर्ल्ड कप इतना आसान नहीं होगा, भारत में और मुश्किल होगा, तो इनको बहुत मेहनत करनी चाहिए, खास तौर पे मिडिल डिफेंस पे और फॉरवर्ड लाइन पे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कोई, जिसको कहते हैं कोई ग्रूमिंग सेंटर नहीं बनाया, गोलकीपर कोई अच्छे नहीं बनाए, पेनल्टी कॉर्नर फ्लिकर कोई अच्छे नहीं बनाए। इसमें एक और कमाल की कि लेफ्ट हाफ को लेफ्ट बैल फुल बैक खिलाया गया, तो आप फुल बैक क्यों लेके गए थे? तो ये सब चीज़ें देखनी होगी, और पुराने मैच निकलवा के, इस एशिया कप के मैच निकलवा के खास तौर पे फेडरेशन के लोग ये देखें, एनालाइज करें कि हम कहाँ ठहरे हुए हैं, और आइंदा साल जो अगला साल पूरा हमारे पास है उसमें हमने किसको कौन सा ओहदा देना है और किसको किस तरह हमने हैंडल करना है, वो अभी से सोच लेना चाहिए। हमने जूनियर टीम को और बेहतर करना है, इसमें कामरान अशरफ लगे हुए थे, उससे पहले ताहिर जमान थे, जुनेद इसमें थे, तो उनसे पूछना चाहिए था कि अंडर 21 कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको हम साथ लेके जाएं। अगर ये अभी से तब्दीली करेंगे और इन खिलाड़ियों को, जो नए खिलाड़ी सेलेक्ट होंगे, इनको 15 से 20 यूरोप के खिलाफ मैच खिलाएंगे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो जाएगी, 14वें से 10वें नंबर पे आ जाएंगे। लेकिन कुछ जिसको कहें मिरेकल, पहले 6 में मैं तो नहीं देख रहा अगले साल के पाकिस्तान की टीम पहले 6 में आ सके।
फरहत खान नए कोच बने हैं, तो क्या फेडरेशन उन पर एतमाद बरकरार रखेगी इस नतीजे के बाद, और क्या खुद फरहत खान भी कोच की हैसियत से कुछ कर दिखाने की सलाहियत रखते हैं आपके ख्याल में?
देखिए, फरहत खान को जब कोच बनाया तो उसको सोच समझ के ही बनाया होगा, इंटरव्यू के बाद बनाया होगा। अब ये फरहत खान पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसे अच्छा कोच या अच्छा मैनेजर साबित करता है। अगर इस एशिया कप की परफॉर्मेंस देखें तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, खासतौर पर देखें ना, हमारे सिर्फ एक ही मैच था अगेंस्ट इंडिया, और मलेशिया को भी आप कंसीडर कर लें, हमने इंडिया पे पहले 4-3 से हम हारे, लेकिन दूसरा मैच 4-0 से हारे और चौथे क्वार्टर में सारे गोल हुए, तो उसको चाहिए था, फरहत खान को चाहिए था कि वो ऑब्जर्व करता उस टीम की स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं और वीक पॉइंट कौन से हैं, कि मार्जिन कम होना चाहिए। अगर 4-3 था, 4-3 होता तो फिर भी हम कहते कि ठीक है, 6 नंबर टीम के साथ 14वें नंबर की टीम खेल रही है, तो इस पर उसको साबित करना होगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फरहत खान को, लड़कों पर और अपने आप पर भी। टेम्परामेंटल तो है वो, शुरू से ही हमने देखा, क्योंकि कस्टम की तरफ से खेलता रहा, इनसाइड लेफ्ट था, फिर सेंटर हाफ खिलाया गया, कभी हॉकी फेंक देनी, कभी अंपायर के खिलाफ उसने, डिसीजन के खिलाफ उसने कोई एहतजाज करना, जब मैनेजर बना तो उसको अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा।
साबिक कप्तान हसीम खान ने टीम से बाहर होने पर सिलेक्शन कमेटी पर इल्जाम आयद कर दिए, तो ये सब कुछ क्या जाहिर कर रहा है?
دیکھیں یہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، خاص طور پر پریزیڈنٹ اور سیکرٹری کی، کہ وہ ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکا۔ جیسے حسیم خان کی آپ نے بات کی، تو میں اس میں حسیم خان کے خلاف ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہو کہ بٹ تھا جو گول کیپر، اس نے بھی یہی کام کیا، وائرل کر دی اپنی اسٹیٹمنٹ۔ یہ نہیں کرنے چاہیے۔ فیڈریشن کو سب کھلاڑیوں کو اعتماد میں لے کے بتانا چاہیے کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی تو پہلے وہ فیڈریشن کو مطلع کریں اور اس کے بعد پریس میں جائیں۔ تو یہ سب چیزیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ہی کرتے ہیں، لیکن پاکستان ہاکی فیڈریشن میں رشید صاحب جیسے آپ جانتے ہیں کہ اتنے مطلب کم لیول کے لوگ ہیں کہ وہ سب چیزیں نہیں کرتے، سب سوائے اس کے کہ ان کا یہی خیال ہے کہ کہیں سے پیسے مل جائیں، کوئی لیگ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ ان کو ہاکی پہ پہلے کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اس کے بعد دوسری ایکٹیویٹی دیکھنی چاہیے۔
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ، لاہور سے سلطان محمود۔
مکاؤ میں انڈیا کے گگن جیت بولر نے مکاؤ اوپن گولف چیمپئن شپ جیت لی۔ ان کا مجموعی سکور 13 انڈر پار 271 رہا۔ برونائی میں ویمنز ایشیا کپ ہاکی چیلنج ٹورنامنٹ کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا ہے۔ پہلے راؤنڈ کے آخری میچ میں پاکستان نے برونائی کو 4-0 سے ہرایا۔ ہمارا لطیف نے ہیٹرک کی۔ ایشین کرکٹ کاؤنسل یوتھ انڈر 19 ایشیا کپ ٹورنامنٹ اگلے ماہ کی 8 تاریخ سے ملیشیا میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہانگ کانگ میں آئی سی سی انٹر کانٹیننٹل کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں افغانستان نے ہانگ کانگ کو 4 روزہ میچ میں 1 اننگز اور 173 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 میچوں کی ویمن ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سیریز منگل کے روز سے شارجہ میں شروع ہو رہی ہے۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔